देखिए जी, दाइश का अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो वो बात करता है बाउंड्री लेस स्टेट्स की, वो यूज करता है टेरर एज अ वेपन टू स्प्रेड हिज आइडियाज। तो आप इसको जब कंपेयर करते हैं उसामा बिन लादेन के साथ, तो दोनों ही टेररिस्ट है और टेररिज्म का जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब अगर देखा जाए जो आपकी भी रिसर्च है, तो जिसका नाम यू नो अबू बकर बगदादी है, उसका जो जो चला जिस अंदाज से वो चला वो भी आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उसने अपना एक तरीकाकार लेके चलना चाहता है, वो सब जगह अपनी टेंटिकल्स लाना चाहता है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी इंफॉर्मेशन है, और कुछ हमारे अपने सोर्सेज भी तो बताते हैं कि पाकिस्तान की वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में टेररिज्म में मुलव्वस रही, जैसे TTP और TTP का ये जो आपका इहसानुल्लाह इहसान है, उसने तो ऑलरेडी अपनी एफिलिएशन शो कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि जितनी भी वर्ल्ड की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रेड आर्मी से लेकर आप डाउन दी लाइन अगर आप सारी देखें, तो ये हमेशा जो होती है इनकी फ्रेंचाइजी होती है, जो छोटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑप्ट कर लेती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा तजर्बा भी है और हमारी इंफॉर्मेशन भी है कि इस वक्त दाइश जो है उसके वो रिप्रेजेंटेटिव जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें मैंने आज कल नाम दिया था मामा बिन अल मुहाजिर का, जिसकी प्रेजेंस भी मिली और जो वीडियो बनाई गई जस्ट टू प्रमोट दाइश, वो गुजरांवाले के किसी इलाके में बनाई गई। तो काफी लोग हैं, मैं बहुत से नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक्सपोज हुए तो फिर जो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है हमारे इन्वेस्टिगेशन की फर्दर प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ ऑफ पंजाब जो पंजाबी तालिबान का गढ़ रहा है वो भी वहां भी इसकी ट्रेसेस मिली। और दूसरी यह है कि अगर आप पिछले 4 हफ्तों की अखबार देख लें तो जो वॉल चॉकिंग हो रही है, जिस अंदाज से वॉल चॉकिंग हो रही है और जिस तरह एजेंसियां उनको पकड़ भी रही हैं, वो आपके सामने है। तो मैं यही कहूंगा सेफली कि दाइश जो है वो अपना घर बनाने की और अपने अपने इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में भरपूर सरतोड़ कोशिश कर रही
है। जी, आपने कुछ इलाकों का भी जिक्र किया, एक सवाल जहन में ये आता है कि दाइश का पाकिस्तान में क्या एजेंडा होगा?
टेररिस्ट वालों का, जिसे टेररिस्ट कहते हैं, उनका एक एजेंडा होता है टेररिज्म। एक छोटा सा ग्रुप कोशिश बना के वो अपने मकासद हल करते हैं। और देखें, जैसे TTP का भी जो एक एजेंडा था, उन्होंने भी अपना अपने ही स्टाइल का काम देना चाह, और इस्लाम के नाम पे जिस तरह उन्होंने कत्लो गारत की और जिस तरह सुसाइडल जैकेट इस्तेमाल की, जिस तरह हुआ वो आपके सामने है ना। उनका कोई समझ लें ऐसा एजेंडा है जिसका कोई बेस हो या कोई उनकी आइडियोलॉजी तो उनकी है नहीं जो मैंने अभी तक देखी है। क्या ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है कि शिया को आप कत्ल कर दो या उनको उठाकर उनके गले काट दो? ये कौन सा इस्लाम है
जी?
और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब अपना असर बढ़ाती है तो वो टेरर इस तरह लेके जाती है कि लोग फिर उससे खौफजदा हो जाते हैं।
ठीक है,
आपके सामने, आपके इलाके बुनेर में और आके देखें मालाकांड स्वात में, कि एक मल्ला मौलाना फजलुल्लाह मुल्ला फजल उठता है, जिसे आप एक दफा याद करते हैं मौलाना रेडियो से, और पूरे के पूरे मालाकांड स्वात में सिर्फ टेरर की वजह से और अपने गन के जोर पे वो टेक ओवर कर लेता है। तो इस तरह ये चीज जो है ये खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके सामने आना चाहिए, UNO को और सारे मुस्लिम जितनी भी दुनिया के मुल्क हैं, आके एक कॉमन स्ट्रेटेजी शुड बी अडॉप्टेड टू डील दिस कॉमन एनिमी। और ये सिर्फ इसकी हीट जो है सिर्फ मिडल ईस्ट या इस हमारे साउथ एशिया में नहीं, मैं समझता अगर ये बड़ी जैसे अलकायदा का एक अफेक्ट पूरी दुनिया में नजर आया, मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि अगर इसको ना रोका गया तो दाइश भी अलकायदा की तरह बहुत सी तबाही चाहिए दुनिया में।
मलिक साहब, आपके दलाइल अपनी जगह ठीक हैं, मगर कुछ पाकिस्तान में जैसे आपकी ही सीट पर इस वक्त चौधरी निसार साहब है दाखिला वजीर की हैसियत से, वो भी डिनाई करते हैं इसको। इसके अलावा ISPR आसिम बाजवा साहब ने भी हमसे ही बात की Washington DC में और उन्होंने डिनाई किया। इसके अलावा आपकी इस बात को आपके सियासी,
पहले तो मैं कहूंगा जी, मैं बिल्कुल सारा आंखों में जो आप कह रहे हैं, लेकिन कब इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, कब ISPR के बंदे ने कहा ये आप महीने पहले की बात कर रहे हैं सर, अभी तो एजेंसियों ने जो बंदे पकड़े हैं पब्लिक हो चुकी है बात, उसके बाद मैंने ना ही चौधरी निषाद साहब की कोई स्टेटमेंट देखी है और ना ही कोई स्टेटमेंट मैंने आईसीआर से देखी है। आप पुरानी बात कर रहे हैं, एक महीने पहले की बात कर रहे हैं, मैं कमी जो भी गुजरे हैं तकरीबन 8-10 दिन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पहले जरूर है ये खबर पब्लिक नहीं थी और ये इनको पकड़ दकड़ नहीं हुई थी, उस पर सिर्फ शक भी आता था। आप तो कंफर्मेशन मिल गई ना कि दे आर देयर और उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड में मौजूद है।
ठीक है सेनेटर मलिक साहब, आप जो ये दलाइल दे रहे हैं और हवाले दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं समझा जाए कि पाकिस्तान आ गए जाकर के अभी जो ये खामोशी है इनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं हो रहे, आगे जाकर के इनको इन्हीं आईएस वगैरह को प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल क्या करे?
वेल, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉक्सी तो डिपेंड करता है कि किसने प्रॉक्सी कहाँ कर रही है। इस वक्त तो प्रॉक्सी से बहुत चीजें आगे बढ़ गई हैं और जिस तरह टेररिज्म पूरी दुनिया में फैल रही है, अगर यही इन्होंने शुरू कर दिया तो फिर प्रॉक्सी से बात आगे चली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत कोशिश कर रहा है, हमारे महदूद वसायल होते हुए भी जितना टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस किया है या जितने 50,000 से ज्यादा लोग अपने शहीद कराए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, एवरीबॉडी इज ऑलमोस्ट विक्टिम ऑफ दिस टेररिज्म, तो पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में चाहेगा। और आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देख ली है कि डैश को हम नहीं बढ़ने देंगे, अगर डैश आगे आई तो हम उसका सर कुछ लेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ये जो इरादा है, जो इन्होंने एक अपना एक मोटो बनाया है, मैं समझता हूँ कि वो इसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब हमसे बात करने के लिए।
शुक्रिया रहमान मनोज साहब,
थैंक यू सर, थैंक यू।